अब आगे वो तीन लोग जिनका किस्सा शुरू से तस्करे में कई दफा गुजरा है, वलसलासतिल्लज़ीन खुल्लिफू, और इन तीन पर भी क्या ये नहीं बताया गया? देखिए कौमा लग गया आगे, क्या ताब अल्लाह, जो ऊपर ताब अल्लाह था ना, नबी मुहाजरीन और अंसार, वही ताब इधर है, वलसलासतिल्लज़ीन खुल्लिफू, और इन तीन पर भी अल्लाह ने रहमत की निगाह की जिनका मामला पीछे डाल दिया गया, मौखर कर दिया गया। कौन थे तीन? काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी, हिला ने माफी है। ये तीन साथियों की जिक्र पीछे आयत 106 में हुआ है, मामला मौखर किया। मौखर करने से क्या मुराद है? इनको कहा कि तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करेगा, मुकातया, बाइकॉट जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं, माशरती तौर पे सोशल बाइकॉट था 50 डेज तक कि ये सजा थी, फिर माफी का ऐलान हुआ। यहाँ तक कि जमीन अपनी तमाम तर कुशादगी के बावजूद इन पर तंग पड़ गई। राहुबत वही है जिससे मरहबा है, पीछे भी बताया था, और दाकत दयक शराहा की जिद है, कि जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद इन पर तंग हो गई। और वज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाह इल्ला इलैह, और इन पर इनकी जानें भी बोझ बन गईं, और इनको यकीन हो गया कि अल्लाह के सिवा कोई जाए पना है ही नहीं। आप क्या समझते हैं ये क्या कैफियत है? ये वही कैफियत है कोई बच्चा माँ से पिटता है मगर इसके बाद इसी से लिपटता है। कहते हैं ना कि माँ मारे और बच्चा मामा पुकारे। आप देखिए मार रोते बच्चे को कोई दूसरा भी पुकारे बुलाए ना तो नहीं आएगा, जाता फिर माँ की गोद में। अल्लाह के बंदों पर अगर अल्लाह की तरफ से कोई सख्ती आती है, कोई सज़ा मिलती है, तो ना सिर्फ वो इस सख्ती को खुश दिली और सब्र से बर्दाश्त करते हैं बल्कि फिर पनाह के लिए रजू अल्लाह ही की तरफ करते हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है ला मल जा वला मन जा मिन का इल्ला इलैक, पनाह मिलेगी तो उसी के हुजूर मिलेगी, दुखों का मदावा करेगा तो वही करेगा। वो अल्लामा इकबाल का खूबसूरत शेर याद है किसी को? न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाने खराब को तेरे अफवे बंदे नवाज में। कहते हैं मैं सारे गुनाह करके जब पलटा भी तो मुझे किसी ने मुआशरे में पनाह नहीं दी, आखिर मुझे आके तेरे ही सामने झुकना पड़ा और यही पनाह मिली। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, तो इसने इनकी तौबा कबूल फरमाई ताकि वो भी मुतवज्जे हो जाए। देखिए अल्लाह क्यों तौबा कबूल करता है? ताकि बंदा बल्ला का शुक्र गुजार होकर उसकी तरफ पलटे। इन्नल्लाह हुवत तवाब रहीम, अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये लिए तूबू क्या है कि अल्लाह उनकी तरफ मेहरबान वाली, ये तूबू क्यों कि वो अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, अपनी कमजोरियों को दूर करें, अपनी कोताहियों को दूर कर लें। क्या पता चला इस आयत से? ये पता चला कि अल्लाह बंदे की तौबा इसलिए कबूल करता है कि बंदा मोहब्बत में फिर अल्लाह की तरफ पलटे। जैसे बच्चे को जब माँ फिर माफ़ कर देती है या उसके साथ फिर वो मामला करती है जो वो चाहता है, तो फिर माँ उसके साथ बहुत प्यार का मामला करती है। तो ये है वो आयत जिसके मामले में हमेशा आपको तफसील से सुनाया गया। काब बिन मालिक शायर भी थे, बहुत अच्छे बात कहने सुनने वाले थे, उन्होंने ये वाक़या बयान किया। और बुखारी में तकरीबन 3-4 सफ़ों की हदीस है जिसमें ये अपना वाक्य सुनाते हैं और कहते हैं कि आखिरी उम्र में ये नाबीना हो गए थे और अपने बेटे या पोते को जब साथ लेकर जाते थे, छड़ी पकड़कर वो इनकी जाता था, तो उस वक्त इन्होंने ये वाक्य सुनाया। और मैं कहती हूँ इतनी सच्चाई है इसमें कि एक एक लफ्ज़ जब पढ़ते हैं तो समझ आता है कौन थे, थोड़ी सी बात। और मेरे आपके लिए इसमें यकीन करें अमल के नुक्ते हैं वो बाद में देखते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि मुखलिस और सच्चे मोमिन थे तीनों। मुनाफिकों को तो अल्लाह ने एक ही इशारे में किक आउट कर दिया कि देखेंगे बाद में इनका जो होगा, लेकिन सच्चे मुनाफिकों को अल्लाह दुनिया में भी सजा देता है कमी बेशी की। ये अलग बात है कि बंदा फिर समझे कि ना समझे। दूसरी बात ये कि ये बार बार अपने इखलास का सबूत दे चुके थे, कभी इनसे कोई कोताही सरजद नहीं होती। ये जुमलों में लिखी है 1 2 3, इनके ऊपर आपको एक ऐसे लिखा रही है इनकी पर्सनैलिटी का। और मुरारा और हिलाल जो थे ये गजवे बदर में भी शरीक हो गए थे, और सब जानते हैं कि गजवे बदर के इस ख्वाब को अल्लाह ने झांक के कह दिया कि आज के बाद तुम कुछ नेकी ना भी करो तो तुम जन्नती हो। इनकी ईमान की सदाकत हर शक को शुबे से बाला तर थी। काब बिन मालिक गज़वे बदर के अलावा हर गज़वे में शामिल हो चुके थे। कहाँ सफ़र शुरू हुआ नबी का, बदर से तबूक आ गई है, सोचिए कितने साल साथ रहा। चलिए हम सिर्फ मदनी दौर करते हैं, 2 हिजरी गज़वे बदर और तबूक अब चल रही है। 8-9 साल से ये साथी दीन की खिदमत कर रहे थे, नबी के साथ थे, हर मौके पे साथ थे, लेकिन तबूक के मौके पे सुस्ती का शिकार हो गए और नबी के हमरकाबी से महरूम हो गए। ये कोताही थी जो दरगुजर के काबिल नहीं थी, ये काबिल दरगुजर नहीं थी। इनकी सारी खिदमत के बावजूद सख्त गिरफ्त हुई। पहले रुकिए और दुआ करें कि अल्लाह ये जो थोड़ी बहुत खिदमत दीन की करते हैं इसके ऊपर मान ना देना हमें, हमें मान बड़ा हो जाता है, कर तो लिया अब दूसरे करें, हमने जो करना था कर लिया, हम अपने हिस्सा डाल चुके थे, ये हिस्सा डालने की बात नहीं है। और सख्ती कितनी बड़ी, अल्लाह की पनाह के मुसलमानों को हुक्म दिया गया कोई इनसे कलाम ना करें, इनके सलाम का जवाब ना दे। 40 दिन तक ऐसी कैफियत रही जिसको इस्लाम कह रहा है कि दौकत अलैहिम अलर्द बीमार होबत, ज़मीन तंग हो गया। आप सोचें आप शादी में जाएं, 500 लोग बैठे हैं और आप क्या सलाम अलैकुम, एक टेबल के पास जाके कोई जवाब नहीं, नो स्माइल नथिंग, आप क्या कहेंगे, आपके ना पे चोट पड़ेगी। अगर अपनी जान अल्लाह के हाथों में ना बेची हो तो ऐसे मौक़ों पे बंदा दीन छोड़ देता है कि रखो अपना दीन मिला के इतने साल करके। 40 दिन मैं सोच रही थी चिल्लाए पूरा 40 दिन, और जब 40 दिन गुजर गए तो मैसेज आ गया कि अब बीवियों को भी अलग कर दो। 50 दिन का मुकात्या सोशल बायकॉट, हम तो अपने रिश्तेदारों के माथे पे तेवरी बर्दाश्त नहीं करते, हम तो उनकी आंख में एक बाल नहीं देखना चाहते। और जो इन पे गुजरा और उन्होंने अपने मुखलिस होने का सबूत दिया और फिर अल्लाह ने उनकी बात को सुना, ये है असल में इन लोगों की खूबी। अगला सारा सबक इन्हीं के ऊपर है कि सच्चों का साथ दो। हम झूठे उजर करके खुद को मुतमईन करके बैठे हुए हैं, वल्लाह किसी को मेरे आपके उजर की ज़रूरत नहीं है। बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, बल्कि इंसान अपने नफ्स को खूब जानता है। मैं आज ना आती इधर, आप मुझे रोक सकते थे, मैं घर से पढ़ा देती, मैं कहती पिछले साल की तफसीर चला दें, माशाल्लाह 10-12 दफ़ा की तफसीर मौजूद है, आप 10 दौरे कुरान की सुन लें, मुख्तस सुन लें, बड़ी सुन लें, छोटी सुन लें, आप खुलासे कुरान सुन लीजिए, तरतीलुल कुरान सुन लें, 10 तफसीरों के नाम तो मैं आपको बता देती हूँ, आप सुन लीजिए, किसी और की सुन ले जाएँ, मैं नहीं पढ़ाती। लेकिन मैं ख़ुद को माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता था कि मैं आ सकती हूँ और मैं नहीं आई। काब कहते हैं कि जितने गज़बे थे मैं उनमें अल्लाह के नबी के साथ रहा। अब ये उनकी स्टोरी है, चूँकि गज़बे बदर अचानक हुई थी और सबको हुक्म भी नहीं था, उसमें मैं शरीक नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है काब की एक खूबी, लैलतुल अक्बा की बैत में भी हाजिर थे जो कल बताया था, अल्लाह के नबी के मदीना आने से पहले से ही इनके अल्लाह के नबी के साथ रबते थे और आप उनको वादे दे चुके थे कि आप आइए हमारे शहर में, हम आपकी मदद करेंगे। कहते हैं कि उस बैत अकबा में जो इस्लाम की हिमायत और हिफाजत का मुआहदा था, मैं उसमें शामिल हो गया, मुझे ये बदर में हाजिर होने से भी ज़्यादा महबूब है। नहीं समझ आए, यानी मैं तो नबी को इस शहर में बुलाने वालों में शामिल हो गया हूँ, मुझे ये खूबी अपनी इतनी पसंद है कि मैं बदर में नहीं हुआ, हालांकि लोगों में बदर मशहूर है। ये खुद कह रहे हैं, ये मैं आपको उनका वाक्य सुना रही हूँ, तफसीर मजरी है उसमें पढ़ सकते हैं, और बेहतर है कि आप बुखारी में से पढ़ लीजिए, दूसरी जिल्द में आएगा जहाँ कुरान की तफसीर की आयात है ना, उसमें आपको ये मिलेगा। कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं बैत अक़बा में शामिल था। हुआ क्या, कहते हैं ग़ज़वे तबूक में गैर हाजिरी का ये वक्त, उस वक्त में जितना खुशहाल और मालदार था पहले कभी ना था, बखुदा मेरे पास कभी इससे पहले 2 सवारियां जमा नहीं हुई जो इस वक्त मौजूद थी, यानी 2 गाड़ियां थी उस दिन मेरे पास। और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात शरीफा गजवात के मामले में ये थी कि मदीना से निकलने के वक्त अपने इरादे को छुपा कर रखते थे ताकि जिस तरफ जिहाद करना है उस तरफ की मुनाफिकों को खबर ना हो। और आप कहा करते थे कि अल हरबु हुदा, जंग तो धोखे का नाम है। लेकिन गज़वा तबूक का वाक़या, सख्त गर्मी, तंग दस्ती और वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैं स्किप कर रही हूँ, कि अल्लाह के नबी ने खुलकर ऐलान कर दिया क्योंकि मौसम और हर चीज़ ही अगेंस्ट थी, तो घर से सोच के आना कि वहाँ जाके को तुम्हें क्या मुश्किलात होंगी। चूँकि मुसलमानों को इसमें मुश्किल आनी थी तो आपने खुल के पहले बता दिया कि जिहाद हमारा तबूक की तरफ है। 10,000 और कुछ कहते हैं 30,000 का लश्कर जमा हुआ। अच्छा, मज़े की बात है कि चेकलिस्ट नहीं बनी थी इस जंग में जाने की, ये आप नोट कीजिएगा नुक्ता। इस जिहाद में निकलने वालों की फहरिस्त नहीं लिखी गई, क्यों? सबको जाना है। जो नहीं जाना चाह रहे थे इनको मौका मिल गया कि हम ना गए तो किसी को खबर ही नहीं होनी, यानी रिकॉर्ड में आई नहीं कोई रिकॉर्ड, कोई साइन इन साइन आउट तो हुआ ही नहीं। खैर, कहते हैं जब अल्लाह के नबी निकले जिहाद के लिए, ये वो वक्त था, खजूरें पक रही थीं और बागात वाले उनमें मशगूल थे। अल्लाह के नबी और मुसलमानों ने सफ़र की तैयारियाँ शुरू की। जुमेरात का दिन था, और ये भी नोट कीजिएगा, अल्लाह के नबी सफ़र के लिए अमूमन जुमेरात का दिन पसंद करते थे, सफ़र जिहाद का हो या कुछ भी हो। कहते हैं, अब ये जुमला आपके मेरे लिए एक खूबसूरत जुमला है, कहते हैं मैं हर रोज़ सुबह को इरादा करता कि जिहाद की तैयारी करूं, मगर बग़ैर किसी तैयारी के वापस आ जाता। मैं दिल में कहता मैं जिहाद पर कादिर हूं, मुझे निकलना चाहिए, मगर यूं ही सुबह शाम रात दिन मेरे इरादे टलते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी और आम मुसलमान जिहाद के लिए चले गए। और मेरे दिल में ये आता रहा कि मैं भी रवाना हो जाऊँ, कहीं रास्ते में मिल जाऊँगा। और कहते हैं काश मैं ऐसा कर लेता, मगर ये काम के अफसोस हो ना सका। यदि बाद में भी दिल में आता रहा चला जाता हूँ, लेट पहुँच जाऊँगा, मिल ही जाऊँगा, चले जैसे हमारे यहाँ कहते हैं दुआ में शामिल हो जाएंगे, लेकिन मैं ना गया। अब क्या हुआ, रसूलुल्लाह के जाने के बाद जब मैं मदीना में देखता तो ये बात मुझे गमगीन करती थी कि पूरे मदीना में मुझे या तो वो लोग नज़र आते जो निफाक में डूबे हुए थे, या बीमार या माजूर जो सफ़र के काबिल नहीं थे। दूसरी तरफ पूरे रास्ते में रसूलुल्लाह को मेरा ख्याल कहीं नहीं आया, यहाँ तक कि तबूक पहुँच गए, उस वक्त एक मजलिस में जिक्र हुआ तो आपने पूछा कि आपको क्या हुआ, वो किधर है? यानी अल्लाह के नबी को एंड में जाके ख्याल आया कि ये किधर है, और ऐसा होता है कई दफ़ा। बनू सलमा के लोगों में से एक शख्स ने कहा कि रसूलुल्लाह वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। अब ये वो मंजर गुजर गया, कहते हैं अब जब मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने बताया कि जी काफिला तो वापस आ रहा है, अब मैं करीब था कि अब अल्लाह के नबी को सामना कैसे करूं, और मैं अपनी गैर हाजिरी का उज़र घबरा कर तैयार करता और ऐसी खूबसूरत बातें करता कि अल्लाह के नबी की नाराज़गी से भी बच जाता और अपने दोस्तों की मदद देता। कहते मेरे दिल में ख्यालात और वसवसे आने, प्लानिंग करता रहा, बल्कि प्लानिंग की बजाय प्लॉटिंग कह ले, यहाँ तक कि खबर मिली कि अल्लाह के नबी आ गए। कहते हैं जूँ ही अल्लाह के नबी के आने की खबर सुनी, सब नेगेटिव चीज़ें, ये उलट सुलट बहाने मेरे दिल से निकल गए। मैंने समझ लिया कि मैं आपकी नाराज़गी से किसी ऐसी बुनियाद पर नहीं निकल सकता जिसमें झूठ होगा। कौन हुआ सादिकीन, सच्चे बन जाएं। कहते हैं मैंने कहा नहीं, मैं झूठे अवसर करके नबी को राज़ी नहीं करूँगा, बेहतर है मैं जाके सच बोल दूँ, और सच मुझे निजात देता। कहते हैं आप वापस आए, हस्ब आदत चाश्त के वक्त सुबह को जब सूरज नुमाया हो रहा होता है मदीना में दाखिल हुए, और आप जब भी शहर में आते थे तो इसी वक्त पर आते थे, और पहले मस्जिद में जाते, दो रकतें पढ़ते, फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जाते, बेटी को मिलते, और उसके बाद फिर हज़रत मुतहरात के पास जाते। कहते हैं इसी के मुताबिक अल्लाह के नबी मस्जिद में गए, दो रकत अदा की, बैठ गए। जब लोगों ने देखा कि अल्लाह के नबी आ गए हैं तो तबूक में ना जाने वाले मुनाफिक, जिनकी तादाद तकरीबन 80 थी, आपकी खिदमत में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, झूठे उज़र पेश कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, और अल्लाह के नबी उनकी ज़ाहरी बातों को सुनकर कहते अच्छा अल्लाह आपको माफ़ करे और आपके बातिन को अल्लाह जानता है। सब खुशी खुशी चले गए, चलो जी जान छूट गई, हो गया सामना, बड़ी जान निकल रही थी। अल्लाह के नबी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि उनको कहने का हक ही नहीं था, अल्लाह ने है ना अपने ऊपर रखा हुआ ये हक। कहते हैं इतने में मेरी बारी आ गई, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, चलते चलते सामने जाकर बैठ गया, फिर मैंने सलाम किया तो आपने ऐसे तबस्सुम फरमाया जैसे नाराज़ आदमी कभी किया करता है। किए कभी आपने कभी ऐसे? कि अक्सर ही करते हैं, जिससे दिल में गुस्सा और आप उसको स्माइल देना चाहें, कैसा स्माइल होता? कहते हैं अल्लाह के नबी के चेहरे के तबस्सुम से मुझे पता चल गया कि आप मुझसे नाराज़ हैं, और बाज़ रिवायत में आता है कि आपने अपना रुख फेर लिया। कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी से कहा कि आप मुझसे अपना चेहरा मुबारक क्यों फेरते हैं, खुदा की कसम मैंने निफाक नहीं किया और ना दीन के मामले में किसी शक और शुबे में आया हूँ, और ना मैंने इसमें कोई तब्दीली की है। फिर आपने कहा अच्छा फिर आप जिहाद में क्यों नहीं गए, क्या आपने सवारी नहीं खरीद ली थी? मैंने अर्ज किया, बेशक अल्लाह के रसूल, अगर मैं आपके सिवा दुनिया के किसी दूसरे आदमी के सामने बैठा होता तो मैं कोई उजर घड़कर आपकी नाराजगी से बच सकता था। मुझे बातें बनानी बड़ी आती, खुद कह रहे हैं, शायर थे और बात खूबसूरत करते थे। कहते हैं मुझे जदाल और बातें बनाने में बड़ी महारत है, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने ये समझ लिया कि अगर मैंने आपसे कोई झूठी बात कही और आप वक्ती तौर पर मुझसे राजी भी हो गए तो अल्लाह मेरी हालत आप पर ज़रूर खोल कर आपको मुझसे नाराज़ कर देगा। इस जुमले को लिख लें, शौहर को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, किसी दोस्त साथी को झूठ बोलकर आप थोड़ी देर के लिए खुश करेंगे, अल्लाह असल हकीकत उनको भी दिखा देता है, छुपता ही नहीं है। अल्लाह की सुन्नत ही ये है। और फिर कहते हैं कि मैंने अपनी सच्ची बात आपको बता दी, क्या आप मुझसे नाराज़ हों, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देंगे, लेकिन जिहाद से दूर रहने की कोई वजह, कोई उज़र मेरे पास नहीं, जिस्मानी, माली, कवी, पैसे वाला सब कुछ मेरे पास था। अब आप सोचिए ज़रा, है ना बेवकूफ़ी, इनके रिश्तेदार जो थे ना दूर खड़े कह रहे थे, देखो बेवकूफ़ बातें बनाता। खैर, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस शख्स ने सच बोला है, और फरमाया अच्छा जाओ, अब अल्लाह तुम्हारे मामले में जो फैसला करेंगे वही होगा। कहते हैं कि यहाँ से मैं उठ के गया तो बनू सलमा के कुछ लोग मेरे पीछे और कहने लगे, इससे पहले तो हमारे इल्म में तुमने कोई गुनाह नहीं किया, ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की, इस वक्त कोई उज़र पेश कर देते जैसा दूसरे पीछे रहने वालों ने किया, और तुम्हारे गुनाह की माफ़ी के लिए रसूल का इस्तग़फ़ार करना ही काफ़ी है, यानी अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए माफ़ी भी मांग देते। बखुदा ये लोग मुझे बार बार मलामत करते रहे, यहाँ तक कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं लौट जाऊँ और जाकर अर्ज़ कर दूँ कि जो बात मैंने कही थी वो गलत थी और मेरा उज़र ये था और वो था। मगर फिर मैंने दिल में कहा, मैं एक गुनाह के दो गुनाह नहीं बनाऊँगा। ये भी नोट करें, बाज़ दफ़ा हम एक नेकी से रुक कर एक गुनाह तो करते हैं, फिर उस पर वो कहते हैं ना कि उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनास्त, कहते हैं एक गुनाह के दो गुनाह नहीं बनाऊँगा, एक तो गुनाह पीछे रहने का हो गया, तब दूसरा गुनाह झूठ बोलने का कर गुजरूं। फिर मैंने पूछा, क्या मेरे सिवा कोई और भी है जिसने अपने जुर्म का इकरार किया? लोगों ने बताया, हाँ हैं दो लोग तेरी जैसे, उन्होंने भी आके अल्लाह के नबी के सामने इकरार जुर्म किया। कहा अच्छा, उनको क्या जवाब मिला? कौन को भी अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करो। कौन है? मुरारा और हिलाल। कहते हैं कि फिर मैं जम गया, अब मैं अकेला नहीं, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, जो दूसरे दो लोग थे, इब्ने अबी हातिम की रिवायत में था कि मुरारा क्यों पीछे रहे थे, ये भी सुन लें, हमारे सब के पाँव पकड़े हुए हैं, वो याद रखिए जो नौ चीज़ों के इम्तहान थे। मुरारा का एक बाग था जिसका फल उस वक़्त पक रहा था, उन्होंने अपने दिल में कहा, और ये आप भी सुन लीजिए और मैं भी बोल दूँ, क्या कहा? तुमने इससे पहले बहुत से गज़वात में हिस्सा लिया है, अगर इस साल नहीं जाओगे तो क्या जुर्म है? इसके बाद जब इन्हें अपने गुनाह पर तनबीह हुई तो उन्होंने अल्लाह से अहद किया कि ये बाग मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया। और जो तीसरे शख्स थे, हिलाल बिन उमैया, कहते कि इनके अहलो याल अरसे से अलग अलग थे, इस मौके पर जब सब जमा हुए, यानी इनके बच्चे आए हुए थे, इनकी फैमिली थी, है हमारा ये इशू कभी जी, फैमिली आई हुई थी, भाई बहन जमा थे, ख़ानदान की शादी थी, दावतें चल रही हैं, कुछ इसी का ख्याल था। कहने लगे मुझे ख्याल आया, अगर इस साल मैं अपने अहलो याल में रहूं और उनके साथ रहूं और जंग में ना जाऊं तो क्या फ़र्क पड़ता है, पहले जाते ही हो ना। इनको भी जब अपने गुनाह का ख्याल आया तो उन्होंने अहद किया, अब मैं अपने अहलो याल से अलहदगी इख्तियार कर लूँगा, डिटैच कर लिया अपने आप को ऐसे लोगों से। कब? कहते हैं कि ये दो लोग तो बदर के मुजाहिदीन में से हैं, मैंने कहा बस मेरे लिए इन्हीं का अमल काबिले तकलीद है और मैं अब नबी के साथ जाके झूठ नहीं बोलूँगा। अब क्या हुआ, ये बड़ा क्रिटिकल है, अल्लाह के नबी और सहाबा को ये अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इनमें से किसी से कलाम नहीं करना, कोई इनसे बात नहीं करता। कहते हम किसी के पास जाते, बात करते, ना कोई सलाम का जवाब देता ना कुछ। और मुस्नद अब्दुर्रज्जाक में आता है, उस वक़्त तो हमारी दुनिया ही बदल गई, ऐसे लगता था ना ये वो लोग हैं जो पहले थे, दोस्तियाँ, याराने, रिश्तेदारियाँ, खुलीग्स। कहते ना हमें अपने बाग और मकान अपने लगते थे, सब अजनबी लगते थे। और कहते मुझे सबसे बड़ी फिक्र ये थी, ये नोट करिएगा, याद रखिए, नाफरमानी का एक लम्हा अगर मौत का लम्हा बन गया। कहते मुझे गम ये था कि अगर मैं इस हाल में मर गया तो नबी सल्लम मेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, और अगर नऊज़ु बिल्लाह इन दिनों में नबी सल्लम की वफ़ात हो गई तो मैं सारी उम्र लोगों में जलीलो ख्वार होता रहूँगा कि अल्लाह के नबी मुझसे नाराज़ थे और गए। ये किसको परवाह होती है कौन हमसे राज़ी है कि नाराज़ है। आपको पता कि माँ बाप नाराज़ हों, नमाजें भी कबूल हो ना हो, जान निकले ना निकले, और मैं एक जगह पढ़ रही थी उस्ताद नाराज हो, अल्लाह को बता क्या होगा उसके बाद। मैं कहती हूँ कुछ ना लेना तो कम से कम अपने उस्ताद की बद्दुआ ना लें और उसकी दुआ ले लें, तो आप कहीं ना कहीं तर जाएंगे। आज वो अदब नहीं, वो एहतमाम नहीं, वो एहसास ही नहीं ना कि मिलता क्या है। पाँव उनकी तरफ करके बच्चे पढ़ते हैं, हर उस्ताद की इज्जत करनी है, और जो हिदायत का रास्ता दिखा दे वो उस्ताद आपकी जूती की नोक पे, जिस वक्त चाहे आप दिल करते नहीं हमारा इनसे दिल भर गया हम दूसरों के पास जा रहे हैं, और जाता कोई कहीं नहीं है, ये भी याद रखो। किसी खूंटे पे नहीं लगे हुए, मैंने दो लोग देखे जो अपनी माँ को छोड़ता वो किसी को नहीं पकड़ता। दर दर का भिखारी आपने खुद सुना हुआ है, धोबी का कुत्ता क्या करता है। याद रखिएगा ये बात कि सहाबा के लिए ये बात इतना बड़ा एक टॉर्चर थी कि अगर हम मर गए या नबी मर गए और हमसे नाराज़ हो तो मेरा क्या बनेगा। कहते हैं मुझसे तो सारी जिंदगी लोगों ने फिर बात ही नहीं करनी अगर अल्लाह के नबी मुझसे नाराज़गी में चले गए। 50 रातें गुजर गई, और कहते हैं वो जो दो साथी थे बेचारे वो तो घर में बैठ गए, रात दिन रोते धोते रहते। मैं जवान था, बाहर निकलता चलता फिरता। अच्छा ये भी नोट करें, ये जवान थे, मेरे दिन में अक्सर आता था काब बिन मालिक बूढ़े होंगे, ये तीन ही बूढ़े बूढ़े बाबे हैं, ये यंग पर्सन थे। तो यूथ का भी एक हिसाब होना है क़यामत के दिन, ये कहाँ घूम फिर के गुजारी है। खैर कहते मैं बाहर जाता, नमाजों में जाता, बाजार में जाता, कहीं कोई मेरी सलाम का जवाब ना देता। नबी की मजलिस में भी जाते थे लेकिन आपको सलाम करता तो देखता कि आपके लब हिले हैं कि नहीं, आपके होंठों में हरकत हुई है कि नहीं। लेकिन जब मैं आपके करीब बैठ के नमाज पढ़ता तो मुझे नमाज में अंदाज़ा होता कि जब मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ तो आप मेरी तरफ देखते हैं, और जो ही मैं सलाम फेर लेता हूँ आप रुख फेर लेते हैं। दिल में कदूरत होती है, दिल नहीं करता देखने को उस बंदे को। अल्लाह के नबी की ये कैफियत थी। खैर कहते हैं कि जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा ये बेवफाई लोगों की, एक दिन अपने चचाजद भाई हज़रत कतादा के पास गया, बल्कि कहते हैं इनके हमसाए में थे तो ये छत पे खड़े होकर उनको सैन में देखते हैं, और कहते हैं ये मेरे इनसे इतनी दोस्ती थी कि मैं इनके बाग की दीवार फांद दी और घर चला गया, सलाम किया, खुदा की कसम उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। ये डिसिप्लिन है। मैंने पूछा है कतादा क्या तुम नहीं जानते कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। इस पर भी कतादा खामोश, कोई जवाब नहीं। मैंने एक बार दो बार तीन बल्कि 4 बार जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जानता है बस, फिर मुझे नहीं पता। और उसका रसूल कहते मैं रो पड़ा और इसी तरह वापस आ गया बाग से दीवार फैलांग के। कहते हैं अब देखिए इसके बाद आजमाइश क्या आती है काब की। कहते हैं मदीना के बाजार में चल रहा था कि अचानक मुल्क शाम का एक निबती, निबती कौन है आपको पता, कबीला था मुल्क शाम से, गल्ला फरोख करने के लिए शाम से मदीना आता था। उसको देखा लोगों से पूछ रहा है काब किधर है, काब बिन मालिक कौन है किधर है। लोगों ने मेरी तरफ देख के इशारा किया वो है। कहते वो आदमी मेरे पास आया और शाहे गस्सान का एक ख़त जो रेशमी रुमाल पे लिपटा हुआ था लाकर मुझे दिया। बादशाह ने ख़त लिखा है, इनको ज़रा मैसेज से पढ़िएगा। जो लोग दिल से ज़रा से हिले होते हैं ना उनको दूसरे लोग बहुत कॉल्स देते हैं कि आप आइए हम आपकी कदर करते हैं। क्या कहा सुनिए, ख़त देखिए। बादशाह लिखता है अम्मा बात, मुझे ये खबर मिली है कि आपके नबी ने आपसे बेवफाई की है। नऊज़ु बिल्लाह, नबी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं ना कि देखो आपने तो इन पे इतनी जान माल लगा दिया और आखिर इन्होंने आपकी ये कदर की है और आपको दूर कर रखा है। अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िल्लत और हलाकत की जगह में नहीं रखा, तुम अगर हमारे यहाँ आना पसंद करो तो आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये किसका खत है, शाही खत, आओ तुम्हें वज़ीर मशीर बनाते हैं। क्या आप खुश नहीं हुए होंगे सुन के, अल्लाह के नबी को एक मैसेज भेजा होगा नहीं तो ना सही, आप तो हैं ही ना कदरे। आ इधर तो कोई किसी की कदर ही नहीं करता, इधर तो सारे एक ही बराबर हैं, किसी की वैल्यू नहीं है। नहीं कहते मैंने ये ख़त पढ़ा और कहा ये एक इम्तिहान और आजमाइश है, क्या बहले कुफर मुझसे तमा और तवक्कु रखते हैं कि मैं उनके साथ मिल जाऊँ। और कहते हैं ये ख़त लेकर आगे बढ़ा, एक दुकान पर तंदूर जल रहा था रोटियां जिसमें पकाते हैं, मैंने वो ख़त उसमें झोंक दिया। अल्लाह हमें ऐसा मुखलस बना दे अपनी कौस के साथ। कहते हैं जब 40 रातें गुजर गईं तो अल्लाह के नबी का कासिद खुज़ैमा बिन साबित मेरे पास आए। कहा, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी से अलहदगी कर लो। मैंने पूछा कि तलाक दे दूँ? कहा, नहीं, बस करीब ना जाओ उसके, बीवी रहेगी लेकिन तुम उससे ताल्लुक़ नहीं रखो। इसी तरह के हुक्म वो दो साथियों को भी पहुँच गए। कहते, मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम आके चली जाओ और वहीं रहो जब तक अल्लाह फैसला ना करें। देखिए, उस वक्त वही आती थी तो इनको पता होता था हमारा केस चल रहा है अदालत में, आएगा फैसला। और जो हिलाल बिन उमैया की बीवी थी, खौला उनका नाम था, खौला बिनते आसिम, जब ये हुक्म मिला कि बीवियों को अलग कर दो, तो ये अल्लाह के नबी के पास आई, कहने लगी, हिलाल बिन उमैया बूढ़े और ज़यीफ़ हैं, कोई खादिम नहीं है। और इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, कहते हैं ज़यीफ़ुल बसर भी हैं, नज़र भी नहीं काम करती, क्या आप ये पसंद नहीं करेंगे कि मैं इनकी खिदमत करती रहूं? फरमाए, खिदमत करना मना नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे पास ना आए। इशारा था कि शौहर बीवी का ताल्लुक नहीं होगा। बीवी कहने लगी, वो तो बुढ़ापे की वजह से ऐसे हो गए कि इनमें कोई हरकत ही नहीं, वल्लाह इन पर तो मुसलसल गिरिया तारी है, रात दिन रोते रहते हैं, यानी उनको इस चीज़ की हाजत ही नहीं है। कब कहते हैं कि मुझे भी मेरे पास दोस्तों ने मशवरा, जो मुतल्लकीन थे होंगे कोई दूर पार के, मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी से कहो कि मुझे भी इजाज़त दें कि मैं अपनी बीवी को साथ रख लूँ, जैसे आपने हिलाल को इजाज़त दे दी है। तो ये कहने के, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी पता नहीं क्या जवाब दें, मैं जवान आदमी हूँ, बीवी को साथ रखूँ, हो सकता है मैं कोई हुक्म अदुली कर लूँ, तो लिहाजा नहीं। 10 रातें और गुजर गई, 50 दिन हो गए, पौने 2 महीने। कहते हैं तहाई रात गुजर गई, मिड नाइट थी, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लम पर रियायतें उतरी हमारी तौबा की कबूलियत की। नबी सल्लम की बीवी उम्मे सलमा जो उस वक़्त हाजिर थी, कहने लगी, अल्लाह के नबी, अगर इजाज़त हो तो काब बिन मालिक को इसी वक्त खबर ना दे दें जाके? तो आपने कहा, नहीं, ऐसा हुआ तो लोगों का हजूम हो जाएगा और रात की नींद मुश्किल हो जाएगी। मिड नाइट में ये तौबा की आयतें उतरी क्यों? यहाँ मुझे हदीस से आता रही है कि जब रात का आखिरी हिस्सा होता है तो अल्लाह आसमान दुनिया पे आता है, हल में मुस्तगफिर है कोई अपने गुनाहों से बख्शिश मांगने वाला। और जब सुबह हुई, काब कहते हैं कि 50वीं रात के बाद जब सुबह की नमाज़ पढ़कर मैं अपने घर की छत पर बैठा था और हालत वो थी कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में कहा कि दाक़त अलैहिम अल-अर्ध बिमा रहबत, कि वाकई मेरी दुनिया मुझ पर तंग हो रही थी, अचानक मैंने सला, सीन लाम आइन, सला नाम का एक पहाड़ है, उसके ऊपर से किसी चिल्लाने वाले की आवाज़ सुनी जो बुलंद आवाज़ से कह रहा था, काब बिन मालिक इब्शरी, मुबारक हो, मुबारक हो। कहते, मैंने आवाज़ सुनी तो ये कहने वाले कौन होंगे भला? असाबिकून अल्अवल, अबू बकर से दिखते जबले सला पे चढ़ के आवाज़ दी कि अल्लाह ने काब बिन मालिक की तौबा कबूल की है, बिशारत हो। और एक रिवायत में आता है कि ये खुशखबरी काब को सुनाने के लिए दो आदमी दौड़े, एक इनमें आगे बढ़ गया, जो पीछे रह गया उसने ये किया कि सिला पहाड़ पर चढ़कर आवाज़ दी, और कहते हैं कि ये अबू बकर और उमर थे, नेकियों के मतलाशी। हम तो दुनिया से जान छुड़ा के आके बैठ जाएं तो बड़ी बात है, इनकी नज़र हमें तो दुनिया छोड़ती नहीं। मुझे लगता है क्या एल्फी और क्या गम लगी होगी कदमों को, ये दुनिया मुख़त्तम ही नहीं होती, हर दिन नया उजर, हर दिन नई मजबूरी, हर दिन नया प्रॉब्लम। कभी बैठ के इंसान सोचे, मेरा नसीब ऐसा, मैं कभी कोई काम पूरा नहीं करूँगी और ये दुनिया मुझे कहाँ मिलेगी? अल्लाह अकबर कबीरा। और आप कहें कि ये क्या वो लोग थे, ये रोबोट नहीं थे? काब कहते हैं, मैंने ये आवाज़ सुनी, मैं सजदे में गिर गया और मैं खुशी के मारे रोने लगा। अब मुझे पता चला कि कुशादगी आ गई है, कुशादगी इसमें है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो, दुनिया की दौलत, माल, घर से खुशियाँ नहीं मिलती। खैर, सुबह की नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने खुद आम सहाबा को खबर दी कि इनकी तौबा कबूल हो गई है। फिर तो कहते हैं लोग हमारी तरफ ऐसे मुबारक देने के लिए आए थे कि बाद लोग घोड़ों पर सवार, बस दूर से, बस पहाड़ों पे, कि पहाड़ों पे खड़े हुए लोग हमें आवाज़ें दे रहे थे और उनकी आवाज़ें हम तक पहुंच रही थी। कहते, मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ तो लोग मुझे जोक तर जोक मुबारकें दे रहे हैं। कब कहते हैं, जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लम वहाँ बैठे थे आपके गिर सहाबा का मजमा, मुझे देखकर सबसे पहले तलहा बिन उबैदुल्ला खड़े होकर मेरी तरफ लपके और मुझसे मुसाफा किया, शेक हैंड किया, तौबा कबूल होने पे मुबारक दी। क्या मुझे और आपको भी ये मुबारक मिल गई है अभी दुनिया में? मैं सोचती हूँ कि इनके ऊपर 50 दिन की तलही तो गुजरी, लेकिन ये तो हो गया ना कि अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया। हम पता नहीं कितने गुनाहों के पलड़ों के साथ जी रहे हैं, वल्लाही अगर बू आ रही होती ना तो हम कभी अपने गुनाहों की बू के साथ नमाज भी ना अदा कर पाते। गुनाहों के गिल्ट के साथ नेकियां भी कोई नहीं खुशी देती, इल्ला ये कि चले कुछ कंपनसेशन तो होती है। जब तलहा इनकी तरफ आए, कहते हैं कि हजरत तलहा का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलता, जब मैंने रसूलुल्लाह को सलाम किया तो आपका चेहरा मुबारक खुशी की वजह से चमक रहा था। और आपको था कि नबी सल्लम की क्या सुन्नत थी, जब आप खुश होते ना आपका चेहरा ग्लो करता, खुश होते ऐसे लगता आपका पूरा चेहरा मुस्कुरा रहा है, आंखें भी मुस्कुराती। कहने लगे काब तुझे बिशारत हो, मैं तुम्हें ऐसे मुबारक दिन की जो तुम्हारी उम्र में पैदाइश से लेकर आज तक सबसे बेहतर दिन है।
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
जरा रुकिए और सोचिए क्या मिला आज काब को, क्या मिला? इनाम में गाड़ी निकली, लैंड क्रूजर मिल गई, जुड़वा बेटे पैदा हुए, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत से शादी हो गई, कहीं उनका नाम किसी किताब में आ गया। किस बात की? अल्लाह के नबी कह रहे हैं एकाब जब से तुम पैदा हुए आज तक ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दिन है। किस बात की? कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की। आप और मैं भी तो अपने आप से पूछें, हमारी इस तौबा के सफ़र में हमें क्या मिला, हमने क्या लिया है? क्या तौबा कबूल हुई है? तौबा की तौफीक हुई है? कोई एक गुनाह छोड़ा? कोई एक बुराई छोड़ी? कोई एक नेकी जो छोड़ी भी थी उसको अपनाने की नीयत की? तो याद रखिए ये सूरह तौबा मुझे आपको बहुत कुछ नहीं दे के जाएगी। अगर मैंने आपने इसको तौबा नहीं की, पहले दिन के सबक पे मैंने आपसे ये बात की थी कि ये तौबा इसलिए सूरह तौबा है कि ये तौबा करने पे मजबूर करती है। और ये क्या काम था, एक नेकी के काम से पीछे रहते, गुनाह नहीं किया। लिखे ये जुमले चंद कड़वे जुमले हैं लेकिन लिखने पड़ेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहर भी करता है कभी कारे दरिया की। इन लोगों ने कोई हराम नहीं किया, इन्होंने हराम को हलाल नहीं बनाया, इन्होंने मशकूक को इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने मकरूह को नहीं लिया, ये कबायर का शिकार नहीं हुए, ये सगायर में नहीं उलझे, कोई गुना नहीं हुआ, हाँ नेकी के मौके से पीछे हटे। अल्लाह को ये बात बुरी लगी, अपने ऊपर लीजिए। क्या मेरी जिंदगी में ये जो लिस्ट मैंने अभी बोली है इसमें से कुछ है? याद रखिए बर्तन साफ होगा ना फिर चमक आती है, फिर चीज आती है अंदर। गुनाहों का ये गिल्ट है जो आपको मुझे नेकियों से दूर रखता है, फेस नहीं कर पाते हम अल्लाह को। कई लोग कहते हैं नमाज कैसे पढ़े, सारा दिन तो गुनाह करते हैं, ये नमाज से भी रोक लेता है शैतान। लो अब हम उम्रे पे जाएं, लो फिर आके तो यही करतूत करने हैं, हज कर ले जाया हो जाएगा, बाद में फिर हमने आके ये काम करने बूढ़े होके जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने जब इनको मुबारक दी तो ये कहते हैं अल्लाह के नबी ये हुक्म आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? आपने फरमाया नहीं ये अल्लाह का हुक्म है, तुमने सच बोला था, अल्लाह ने तुम्हारी सच्चाई को जाहिर कर दिया। कहते जब मैं आपके सामने बैठा तो अर्ज किया अल्लाह के रसूल मेरी तौबा ये है कि मैं अपने सब मालो मता से निकल जाऊं और सब को अल्लाह की राह में सदका कर दूं। ये होते हैं तशक्कुर के जज्बे कि जिन चीज़ों ने पाँव पकड़े थे मैं उन चीज़ों को ही निकाल दूं रास्ते में से, अगले किसी मौके पे फिर ना फिसल जाऊं। आपने फरमाया नहीं कुछ माल अपनी ज़रूरत के लिए रहने दो। देखिए अल्लाह के नबी मशवरा दे रहे हैं कि तुम जिंदा हो तुम्हें चीज़ें चाहिए, चलो अपनी ज़रूरत का तो रख लो, ये बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया कि अच्छा आधा माल सदका कर दूँ, आपने इससे भी इनकार फरमाया। फिर मैंने एक तिहाई माल की इजाज़त मांगी तो आपने इसको कबूल फरमा लिया। 1/3 अपना घर का तीसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दे दिया, 3 में से 1 गाड़ी अल्लाह के रास्ते में दे दी, 3 मिलियन में से 1 मिलियन बैंक का क्रेडिट कैश सारा अल्लाह को दे दिया। बड़े हौसले थे, ये सच्चे लोग थे। कहते मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे सच बोलने की वजह से निजात दी है ना, तो मैं अहद करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा कभी सच के सिवा कोई कलमा नहीं बोलूँगा। फिर फरमाया कि जब से मैंने रसूलुल्लाह से ये सच बोलने का अहद किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया कि ये बुढ़ापे में कहानी सुना रहे हैं, कहते हैं उस दिन से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई कलमा झूठ का मेरी जुबान पर नहीं आया। हम में से कोई कह सकता है पिछले 1 साल से कोई झूठ नहीं बोला, 1 माह से नहीं बोला, 1 हफ्ते से नहीं बोला, 1 दिन में, कल का पूरे दिन में कोई झूठ नहीं बोला? कहते मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और मुझे उम्मीद है कि बाकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला मुझे झूठ से महफूज रखेंगे। कब? कहते हैं खुदा की कसम इस्लाम के बाद इससे बड़ी नेमत मुझे नहीं मिली कि मैंने रसूलुल्लाह के सामने सच बोला, झूठ से परहेज़ किया, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलता तो हलाकत में पड़ जाता, जिस तरह दूसरे झूठी कस्में खाने वाले हलाक हुए, जिनके बारे में नाजिल हुआ कि सयहलिफूना बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैही से लेके फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल क़ौमिल फ़ासिकीन, पीछे पड़ चुके हैं।